समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वाविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 28। बहुत सुंदर इसकी पहले अनुवाद हम देख लेते हैं फिर तात्पर्य को देखेंगे। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा और न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार हम BMS कॉलेज में क्लास दे रहे थे और एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई आत्मा परमात्मा तो एक ही है, आपने बोला हृदय में रहता तो एक ही है। तो मैंने उनको बड़ा सिंपल बात समझाई, मैंने कहा देखिए इस समय प्रवचन कर रहा हूं तो मैं आप लोगों का टीचर हूं और आप स्टूडेंट हैं या नहीं। हाँ। तो हमने कहा आप दोनों ही लोग या हम दोनों ही लोग इस रूम में बैठे हैं कि नहीं। हाँ। तो क्या आप और मैं एक हैं? तो उत्तर है नहीं, आप स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूं। तो क्या दोनों का ज्ञान बराबर है? नहीं, नहीं तो एक ही टीचर और दूसरे के स्टूडेंट होने का मतलब ही नहीं होता। तो यानी कि दोनों लोग एक ही जगह बैठे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों लोग एक ही हैं। और ये अज्ञान बहुत फैलाया है तथाकथित संतों ने कि परमात्मा में लीन हो जाओगे, तुम ही परमात्मा हो, भूल गए हो तुम परमात्मा हो, बस तुम्हें याद करना है कि तुम परमात्मा हो। इस प्रकार की बहुत बड़ी बहुत गलत बात बताई जाती है, तो ये बात नहीं करनी चाहिए। तो यहां पे पहले बलदेव विद्याभूषण की टीका को एक बार देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि व्यक्ति जो सच में देखना चाहता है या देखने की शक्ति है, और वो देखने की शक्ति अर्थात सच्चे ज्ञान के द्वारा देखने की शक्ति, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी खराब है तो आप भी देख रहे हो गाड़ी खराब है, लेकिन मैकेनिक के गाड़ी को देखने में कि गाड़ी खराब है और मेरे देखने में अंतर है। दोनों आंख से ही देख रहे हैं, कान से उसकी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन मैकेनिक के पास ज्ञान की शक्ति है और इस ज्ञान के द्वारा वो देख रहा है कि इस कार में क्या गड़बड़ है, वो ठीक कर सकता है। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति देख रहा है कि जो मेरे सामने जो प्रभु जी बैठे हैं, ये मैं अपने आप को भी देखूं या आसपास जितने भी लोगों को देख रहा हूं, क्या शरीरों को नहीं देख रहा? देख रहा हूं। और ये भी देख रहा हूं कि इससे मेरे सामने आप बैठे हैं, आप जिंदा हो, आप देख रहे हो मैं जिंदा हूं, और ये देख रहे हैं कि लैपटॉप जिंदा नहीं है, ये तो सब देख रहे हैं। लेकिन क्या हम इस प्रकार से देखते हैं कि नहीं ये जीव जो है वो शरीर को धारण किया हुआ है और किस प्रकार से परमात्मा से कंट्रोल कर रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि ये अगर अपने शरीरों को हम कार की तरह से कंपेयर करें तो कारों को तो हम देख रहे हैं, लेकिन कार के पीछे जो ड्राइवर है उसको नहीं देख पाते, और ड्राइवर के पीछे सुपर ड्राइवर जो है उसको तो बिल्कुल ही नहीं देख पाते। तो ये है, ये इसे कहते हैं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। ये आगे के श्लोकों में कभी आता है, बहुत सुंदर है। विमूढ़ नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अब व्यक्ति देखेगा कैसे? तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार के सत्य को देखता है तत्वदर्शी, उनका संग करके। बहुत सुंदर बात है। देखिए अगर आप ये श्लोक नहीं कभी सुने होते तो जिंदगी में कभी इस तरह से सोचने के बारे में सोच भी नहीं पाते। इस तरह की दृष्टि को डेवलप करना है या ऐसी दृष्टि हो सकती है ये देख भी नहीं पाते, सोच ही नहीं सकते। वो हमारी चेतना के एरिया में, जोन में आता ही नहीं। तो यहां इसलिए वो बोल रहे हैं बहुत सुंदर टीका कि भक्तों के संग में आकर के जो तत्वदर्शी हैं, जो इस प्रकार से देख रहे हैं, उनका संग, उनका सुन करके व्यक्ति भगवान को देखने में, परसीव करने में, सभी जगत में परसीव करने में वो सक्षम हो पाता है। और क्या देखेगा? उसमें लिखा है यहां पे समम सर्वेश भूतेषु, सभी जीवात्माओं में है। ऐसा नहीं है कि एक कीड़े में नहीं है और केवल मेरे ही हृदय में है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि जानवरों में जीवात्मा लाइफ नहीं होती इसलिए उनको मार के खा सकते हैं, लेकिन यहां तो ये बात नहीं आ रही है। भगवद गीता परफेक्ट शास्त्र, इसमें बोल रहे हैं समम सर्वेश भूतेषु, सभी जीवात्माओं के हृदय में भगवान है, तिष्ठन्तम परमेश्वरम, बैठे हुए हैं। लेकिन यहां बोल रहे हैं समम का अर्थ है, एक और अर्थ समम का अर्थ है कि इम्पार्शियल है, वो जीवात्मा के द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित नहीं होते। जब जीवात्मा का शरीर नष्ट होता है, विनष्ट होता है, तो वो नष्ट नहीं होते। और एक और अर्थ है कि जैसे जीव जब कुछ भौतिक कार्य करता है तो भगवान उसे करने की शक्ति देते हैं, लेकिन जीव उस कार्य के प्रभाव से, कर्म से लिप्त हो जाता है, लेकिन भगवान लिप्त नहीं होते। जैसे मान लीजिए हम दोनों लोग मिलकर चोरी कर रहे हैं या किसी का मर्डर करें, हम आपको मर्डर करने के लिए बोल नहीं रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, बहुत बुरा कार्य है। तो जब दो लोग मिलकर चोरी करते हैं तो दोनों लोग लिप्त हो जाते हैं, दोनों लोगों पर पाप लगता है, दोनों लोगों को पुलिस पकड़ती है, अब आप कहेंगे तो फिर तो परमेश्वर को सबसे पहले पकड़ना चाहिए। आपने अभी बताया कि बुरे कर्म जो है वो भगवान की शक्ति से ही आता होते हैं और अच्छे कर्म भी होते हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, भगवान केवल उपद्रष्टा अनुमंता चाह, वो देख रहे हैं कि क्या इच्छा कर रहा है जीव, और अनुमंता प्रकृति के द्वारा से करवा रहे हैं, खुद कभी उसमें लिप्त नहीं होते। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कोई बहुत पावरफुल मैग्नेट हो और मैग्नेट से आप कुछ चीजें घुमा रहे हैं इधर से उधर, तो मैग्नेट की शक्ति से ही वो घूम रहा है लेकिन मैग्नेट उसको स्पर्श भी नहीं करता। या फिर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा उदाहरण, और अच्छा उदाहरण है सूर्य का, सूर्य कितना दूर है और उसकी वजह से कितने सारे यहां पे क्रियान्वित चीजें हो रही हैं। एक बीज एक पेड़ में उसमें जमीन में पड़ता है, उसमें जल पड़ता है और सूर्य की रोशनी जब तक नहीं पड़ेगी वो अंकुरित नहीं होता है। तो आप देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि बीज अपने आप अंकुरित हो रहा है, नहीं कह सकते, लेकिन बीज से जो पेड़ उत्पन्न हो रहा है उस पर सूर्य का कोई दायित्व नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो बीज है जो धरती पे डाला गया, पहली बात तो धरती के कोई मिस्टेक नहीं है, धरती को कोई ब्लेम नहीं कर सकता है कि यहां पे करेले क्यों उग रहे हैं। बीज करेले का है और वो उसको कंपेयर करेंगे जीव की इच्छा भोगने की अच्छे या बुरे तरीके से, और जैसा बीज डाला जाता है वो बिना पृथ्वी के उग नहीं सकता, तो बिना भौतिक प्रकृति की सहायता के भी हम भोग नहीं कर सकते भौतिक भोग, और जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो भी हम जीव मतलब जो बीज है उस पर अंकुर नहीं आ सकता, फल नहीं आ सकता। तो भगवान की सहायता के बिना हम कुछ बिना और भौतिक प्रकृति की सहायता के बिना हम भोग नहीं कर सकते, लेकिन उसका दायित्व हमारा है। तो प्रकृति बिल्कुल न्यूट्रल है, प्रकृति को पाप पुण्य का कोई मतलब ही नहीं है, तो जड़ है, और भगवान भी पूरी तरह से न्यूट्रल है। तुम्हारी इच्छा है, तुमने किया, तुम चाहते थे इसलिए तुम्हारी व्यवस्था कर दी। तो ये समझ देना चाहिए, ये देखना चाहिए, और भगवान पे कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। जैसे कभी कभी एक भक्त बड़ा विरोध में कह रहे थे, क्रिकेटर भारत के क्रिकेटर जब जीरो पे बोल्ड जाते हैं तो ऊपर देखते हैं। आपने देखा है क्रिकेट में बहुत बार जब कोई भी व्यक्ति होगा जो मान लीजिए 100 मतलब शतक जब शतक बनाएगा तब नहीं देखेगा ऊपर, जब उसके 100 रन बन जाएंगे तब ऊपर नहीं देखता है, लेकिन अगर जीरो पे बोल्ड हो गया तब देखता है, अरे भाई तुमने गड़बड़ कर दी। जब 100 बना हुआ था तब देखे थे ऊपर की ऊपर वाले ने कुछ करा है, तब देखेंगे। प्राय जब अच्छा काम करते हैं तो अपने पर क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन पाप करते हैं तो सोचते हैं नहीं भगवान ने करा है, भगवान करा रहा है, मैं कौन करने वाला हूं, मैं तो शुद्ध हूं, आत्मा तो शुद्ध होती है। तो ठीक है, आत्मा शुद्ध होती है, लेकिन जब वो अविद्या से प्रभावित नहीं है, जब अविद्या से प्रभावित है तो पाप अर्पण में लिप्त होता ही है। तो ये है सच्ची दृष्टि, परमात्मा सभी के हृदय में है, उन्हें किसी से कोई घृणा नहीं है, लेकिन वो जीवात्मा की क्रियाओं से प्रभावित नहीं होते। अब आप कृपया तात्पर्य को पढ़िए।
जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है वही सच्चा ज्ञानी।
आप देखिये यही पॉइंट आचार्य विद्याभूषण बोल रहे थे कि ना, भक्तों के संघ के ही द्वारा, प्रभुपाद ने इसको बिल्कुल पहला ही चीज पकड़ ली कि भक्तों के संघ के द्वारा ही व्यक्ति देख पाएगा, अन्यथा भक्तों का संघ नहीं हो तो क्या बोलेगा व्यक्ति, आत्मा तो है लेकिन आत्मा ही परमात्मा है, या अज्ञान में भूल गया है कि वही परमात्मा है। तो अगर भक्तों का संग नहीं होगा तो तथाकथित दार्शनिक लोग भी सही विवेचना सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए भक्तों का संग आवश्यक है। आत्मा परमात्मा और जीव तीनों शरीर में रह रहे हैं।
यस। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता।
तो ये तो हमने स्पष्ट किया था कि जब तक आप भगवान के बारे में भगवद गीता से नहीं सुनेंगे प्रमाणिक रूप से, तो देखने की बात छोड़ दीजिए, देखने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। यस, भक्त के बारे में।
जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया।
और ये सोचिए कि शरीर नष्ट होने की बात छोड़ दीजिए, अगर पैसा नष्ट हो जाता तो कहते सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि इतना अभिनिवेश है उनका कि मेरा जो अस्तित्व है, मेरा पैसा ही मेरा अस्तित्व है। तो इतनी बुरी चेतना हो जाती है कि अगर पैसा चला गया तो सब कुछ खत्म हो गया। इस पे एक भक्त विरोध में कह रहे थे एक व्यक्ति के कनपटी पे एक डाकू ने या जो भी चोर था उसने पिस्तौल रख दी और बोले तुम्हें तुम्हारा धन प्रिय है कि प्राण। तो उसने कुछ काफी देर तक उत्तर नहीं दिया, 5 मिनट हो गया, तो बोले क्या है, क्या प्रिय है? तो कह रहा है मैं सोच रहा हूं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। तो लोगों को कभी कभी अपना धन जो है प्राण से भी अधिक प्रिय होता है, लोग जान भी देते हैं उसके लिए। तो ये कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार से नहीं समझ पा रहा है कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं। और शरीर के नष्ट होने से व्यक्ति सोचता है सब कुछ नष्ट हो गया, और इसी कारण से प्राय भौतिकतावादी लोग बहुत डरते हैं मृत्यु के समय, क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी मृत्यु तो सब कुछ लेके गई, जो कुछ मैंने प्राप्त किया सब खत्म हो जाएगा। और जबकि अद्भुत बात यह है, स्पेशली भारत में लोग बोलते भी कि मैं जा रहा हूं, वो नहीं बोल रहा कि मैं मर रहा हूं, प्राय बोलते मैं जा रहा हूं, मैं तो मर रहा हूं, तो बहुत कम लोग बोलते होंगे मैं जा रहा हूं बोलते हैं। और यहां भी लोग बोलते हैं वो गुजर गए, मतलब यहां से कहीं और चले गए, लेकिन फिर भी लोग बोलते नहीं, मर गए, खत्म हो गए। तो इस शब्द के बोलने से व्यक्ति घबराता है, कोई खत्म नहीं हो रहा, कभी खत्म नहीं हो सकता। यहां पे लिखा है विनश्यत्व स्वविनश्यंतम, शरीर नष्ट होने का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा नष्ट हो गई, कभी नष्ट नहीं होती।
लेकिन वास्तविकता यह नहीं है, शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है, और वह अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं।
मतलब अपने कर्म के अनुसार जीव दूसरे शरीर में जाएगा। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा शरीर प्राप्त होगा, और अगर बहुत खराब कर्म किए हैं, बहुत तमोगुणी व्यक्ति, तो पेड़ इत्यादि बन जाता है।
कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है, और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है, इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है।
देखना यह है कि यहाँ पे आत्मा को परमात्मा क्यों बोल रहे हैं, बहुत सूक्ष्म बात है, आज तक मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं समझ रहा हूं क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि परम ईश्वर मतलब जीवात्मा भी कंट्रोल करता है शरीर को, तो क्योंकि वो शरीर से परे है, शरीर से श्रेष्ठ है, इस दृष्टि में परमेश्वर बोला जाए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा हर स्थिति में हर कुछ कंट्रोल कर रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए। इसलिए कुछ लोग परमेश्वर का अर्थ यहां पे जीव से ले सकते हैं, लेकिन वैसे अर्थ परमेश्वर का यही है कि वो परमात्मा है, परमेश्वर है, तो दोनों ही अर्थ में ले सकते हैं इसको, यहां पे समझ लेना चाहिए। कोई प्रश्न? चलो स्टॉप।